रात के 11 बज रहे थे। वैदेही हापुस गांव के बाहर की तरफ एक पेड़ के पास खड़ी थी। देव भी उससे कुछ दूरी पर एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा था। वो दोनों वहां पर उन लोगों का इंतजार कर रहे थे जिन्होंने रेखा को किडनैप किया था। कुछ देर बाद गाड़ी के आने की आहट हुई। इसी के साथ देव और वैदेही सतर्क हो गए। वैदेही ने देखा कि सामने से एक बड़ी सी सफेद गाड़ी आ रही थी। वो गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसका दरवाजा खुला। उन दोनों को कुछ समझने का मौका मिल पाता उससे पहले गाड़ी का दरवाजा खुला और किसी ने वैदेही को अंदर की तरफ खींच लिया। वैदेही को अंदर खींचते ही गाड़ी का दरवाजा फिर से बंद हो गया। गाड़ी में अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कौन? वैदेही ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी उससे पहले उसके मुंह पर किसी ने कसके हाथ रखा। उसके हाथ में रुमाल थी और उसमें एक अलग तरह की गंध आ रही थी। कुछ ही देर बाद वैदेही को बेहोशी सी छाने लगी। देव ने उन सबको देख लिया था। उसने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और उनके पीछे जाने लगा। चलते वक्त उसने अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन कर ली ताकि उसकी हर पल की खबर पुलिस तक पहुंच सके। वहीं वैदेही ने भी अपने साथ हिडन कैमरा ले रखा था। गाड़ी लगातार चले जा रही थी और काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो किसी दूसरे गांव में पहुंची। उस गांव की सीमा को पार करने के बाद वो लोग एक बड़ी सी हवेली के आगे खड़े थे। लड़की को बाहर लेकर आओ, एक आदमी गाड़ी से उतरते हुए बोला। देव ने अपनी मोटरसाइकिल उनसे कुछ दूरी पर थी। वो छुपकर उन्हें देखने लगा। उसने देखा कि उस आदमी के उतरने के बाद दो और आदमी उतरे थे। उनमें से एक ने अपनी गोद में वैदेही को उठा रखा था। वैदेही मैम, वैदेही को बेहोश देखकर देव घबरा गया। मुझे तुरंत रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाना होगा। वो लोग वैदेही को अंदर ले गए। अंदर क्या चल रहा था देव उससे पूरी तरह अनजान था। उसने तुरंत रेस्क्यू टीम को वहां आने का बोल दिया था। वैदेही को अंदर ले जाने के बाद उसे वहां एक कमरे में ले जाकर किसी बेड पर लिटाया गया। उसके पास एक मोटी सी औरत और एक आदमी खड़ा था। तो ये है उस लड़की की बहन? चलो ये काम अच्छा हुआ, बिना पैसे के इस तरह लड़कियां मिल जाती हैं और फिर हमें अच्छा खासा कमा कर भी दे देती हैं, उस औरत ने कहा। अरे सब महेश दादा का कमाल है, तुम तो अब उनकी जीत की खुशी मनाओ। ताई, राघवेंद्र दादा इस बार फिर जीत गए हैं। अगले 5 सालों तक अपना धंधा और भी फलने फूलने वाला है, पास खड़े आदमी ने जवाब दिया। मेरी तो बप्पा से यही दुआ है कि हर बार वही जीते। एक वक्त ऐसा होता था कि हमें लड़कियों को खरीद कर लाना पड़ता था। पहले उनकी अच्छी खासी मोटी रकम चुकाऊं, उसके बाद में कोई 5-6 साल धंधे पर लगकर वो खरीद के पैसे कमा कर देती थी। आजकल तो सब कुछ फ्री में हो रहा है, बस महेश दादा को पैसे देने पड़ते हैं, बाकी पुलिस का कोई झंझट नहीं, वो सब संभाल लेते हैं। मोटी औरत ने सारी बात उस आदमी के सामने रख दी। वो जिस हिसाब से उससे बात कर रही थी उससे ये लग रहा था कि वो उसका काफी विश्वास पात्र था। तभी वो हर एक बात बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बता रही थी। अब हमसे कहाँ कुछ छुपा है ताई, महेश दादा के उपकार को भूल सकते हैं क्या? इस हवेली के मालिक को मार के कब्जा कर लिया और हमें उपहार स्वरूप दे दी। अच्छा ये बता कि आज तेरा यहाँ आना कैसे हुआ? राघवेंद्र दादा जीत गए हैं ना, फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो वहां जलसे में होना चाहिए। समझ लो जलसा है तभी यहाँ पर आया हूँ। ताई, सबसे सुंदर लड़कियों को चुनकर जलसे में नाचने के लिए लेने आया हूँ। नाचने गाने के बाद महफिल भी तो जमानी है, उस आदमी ने कहा। वैदेही बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके पास मौजूद हिडन कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। उस औरत ने वैदेही की तरफ देखा और फिर बोला, इस लड़की को भी ले जाना, दिखने में खूबसूरत है और नहीं भी, ये हमारी तरफ से राघवेंद्र दादा के लिए उपहार होगा। लेकिन ताई ये तो आज ही आई है, क्या ये जाने के लिए मान जाएगी? जैसे वहां से यहां तक बेहोशी की हालत में आई है वैसे ही राघवेंद्र दादा के पास भी पहुंचा देंगे। चल अब बाहर चलते हैं, बाकी की लड़कियों को भी चुन ले, उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। उस आदमी ने हामी भरी और कमरे को बंद करके औरत के साथ बाहर आ गया। उनके जाते ही वैदेही खड़ी हुई। वो उन लोगों की सारी बातें सुन चुकी थी। तुमसे इस रूप में मिलकर अच्छा लगेगा राघवेंद्र प्रताप सिंह, तुम इतने गिरे हुए निकलोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वैदेही के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसने कमरे की खिड़की में मौजूद छेद से इधर उधर देखा तो उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। मौका पाकर वैदेही ने अपना मोबाइल बाहर निकाला और देव को फोन किया। वैदेही मैम, आप ठीक तो है ना? आप बेहोश कैसे? फोन उठाते ही देव ने जल्दी जल्दी कहा। हाँ, उन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया था। डोंट वरी, हमारा हिडन कैमरे वाला आइडिया काम कर गया और इन बेवकूफों ने भर बह के राघवेंद्र और महेश की तारीफ की है। इतने सबूत काफी होंगे उन लोगों को जेल के पीछे डालने के लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ठीक हो ना? तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे लिए मत घबराया करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरी बात ठीक से सुनो, तुमने रेस्क्यू के लिए टीम को कॉल कर दिया है ना? हाँ मैम, देव ने हामी भरते हुए कहा। वेरी गुड, इन लोगों ने प्लान किया है कि ये राघवेंद्र की होने वाली पार्टी में यहाँ से कुछ लड़कियों को लेकर जाएंगे, मैं भी उनमें से एक होने वाली हूँ। तुम ऐसा करना कि एक और टीम रेडी करने का बोलो और जहाँ पर पार्टी होगी वहाँ पर अगली रेड पड़ेगी। और हाँ, यहाँ पर रेड तभी होगी जब लड़कियाँ राघवेंद्र की पार्टी के लिए निकल चुकी होंगी। वैदेही ने देव को हर एक बात सिरे से समझा दी। लेकिन मैम, क्या आप सच में इन लोगों के साथ जाना चाहती हैं? क्या जरूरत है ये ड्रामा करने की? हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग मौजूद है। नहीं देव, चोर को रंगे हाथ पकड़ा जाए तो बाकी के सबूतों के कोई मायने नहीं रहते। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। ये लोग कुछ देर बाद यहाँ से निकलने वाले हैं। हो सकता है मुझे तुम्हें कॉल या मैसेज करने का मौका ना मिले, तो वहाँ बाहर से नजरें बनाए रखो। ये लोग यहाँ से जाएंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, और उसके बाद तुम रेस्क्यू टीम को बुला लेना। यहाँ की बाकी की लड़कियों को सेफली बाहर निकलवा देना। वैदेही देव को सब समझा रही थी तभी उसने दरवाजे खोलने की आहट सुनी। उसने झट से फोन कट किया और उसे छुपाकर वापस बिस्तर पर लेट गई। वो मोटी औरत उस आदमी के साथ वापस वहां पर आई थी। कितनी बार कहा है इस पप्पू को थोड़ी सी दवाई डालाकर, कहीं किसी लड़की को कुछ हो ना जाए। ये लड़की अभी तक होश में क्यों नहीं आई है? वो औरत झल्लाते हुए बोली। कोई बात नहीं दाई, होश में भी आ जाएगी। ऐसा करो, कुछ लड़कियों को भेजकर इसे थोड़ा तैयार करवा दो। अब नहीं तो वहां पहुंचने के बाद तो होश में आ ही जाएगी। नहीं, इसे इसी हालत में वहीं पर ले चलो। वहां होश में आने के बाद खुद ब खुद तैयार हो जाएगी, और ज्यादा नखरे दिखाने का वक्त भी नहीं मिलेगा, मोटी औरत ने जवाब दिया। वैसे देखा जाए तो मैंने सभी लड़कियां चुन ली हैं, इसे साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की उन्हें पसंद आएगी, तो इसे साथ लेकर तो जा। अगर कोई काम नहीं आई तो वापस ले आना। उस आदमी को ना चाहते हुए भी उसकी बात पर हामी भरनी पड़ी। कुछ देर बाद बाकी की लड़कियां भी तैयार हो चुकी थी। वैदेही अभी भी बेहोश होने का दिखावा कर रही थी। एक आदमी आया और उसे उठाकर एक मिनी बस में बिठा दिया। उसके साथ बाकी की लड़कियां भी मौजूद थी। कोई भी होशियारी करने की कोशिश नहीं करेगी। अगर किसी ने भी ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो एक एक के घर वालों को चुन चुन कर कुएं पर लटका देंगे। बस चलाने से पहले ड्राइवर ने हिदायत दी।
उन सबकी सिक्योरिटी के लिए 4-5 आदमी मौजूद थे। सबके हाथ में बंदूक थी। कुछ देर में बस चल चुकी थी। बस के वहां से निकलते ही देव ने रेस्क्यू टीम को वहां पर आने के लिए फोन कर दिया था। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी थी और उसने मोटी औरत सहित वहां की बाकी की लड़कियों को अरेस्ट कर लिया था।
मैं कह रही हूं साहब, आपको ये बहुत महंगा पड़ेगा, छोड़िए हमें, वो मोटी औरत एक लेडी कांस्टेबल को धक्का देते हुए चिल्ला रही थी।
सस्ती चीजों का तो हमें वैसे भी शौक नहीं है, सीनियर ऑफिसर ने जवाब दिया।
मुझे अपना फोन चाहिए, मुझे एक कॉल करना है, वो औरत घबराते हुए बोली।
वो क्या है ना सुंदरी ताई, आप जिसे फोन करने का सोच रही हैं वो तो इस वक्त अपनी जीत की खुशी में मग्न है। आप उन्हें खुशियां मनाने दीजिए ना, क्यों बेवजह परेशान करना चाहती हैं? एक बार हमें भी तो खातिरदारी का मौका दीजिए, एक लेडी सीनियर ऑफिसर बोली।
सुंदरी ताई चिल्लाती रह गए, लेकिन वो लोग उसे वहां से उठाकर ले गए। हवेली के ऊपर ताला लग चुका था और वहां बाहर टाइट सिक्योरिटी तैनात कर दी गई थी। किसी निजी कारण की वजह से रामचरण त्यागी ने आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन के लिए स्थगित कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होने की वजह से राघवेंद्र के लिए अगले दिन भी जलसा रखा गया था। इस बार ये प्रोग्राम उनके घर पर ना होकर एक बड़े 5-स्टार होटल में था। पूरे होटल को राघवेंद्र ने बुक करवा रखा था। सुंदरी ताई की हवेली से आई हुई लड़कियां वहां पर डांस कर रही थी। महेश और राघवेंद्र पास पास में बैठे हुए थे। कैसा लगा दादा आपको हमारा इंतजाम, महेश ने पूछा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने इस काम को अपने तक ही सीमित रखो, मुझे इसमें घसीटने की कोशिश मत करो। अगर गलती से भी आई और मानव को इस बारे में पता चल गया तो क्या इमेज रह जाएगी मेरी उनके सामने? राघवेंद्र को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। दादा एक तो आप सोचते बहुत हैं, उधर शिवा दादा को देखिए, बोलते हुए महेश ने राघवेंद्र के बड़े भाई शिवेंद्र की तरफ इशारा किया, जो कि उन लड़कियों के साथ हाथ में शराब की बोतल लेकर डांस कर रहा था। मैं तुम्हारे इस धंधे के हमेशा से खिलाफ हूँ, कम से कम इन लड़कियों को तो बख्श दो। क्या दादा, आप भी मारने से पहले सोचते थोड़ी ना है कि लड़का है या लड़की, अब सबके अपने अपने शौक हैं, महेश की बात सुनकर राघवेंद्र ने हंसकर बोला। हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर भी मुझे ये सब नहीं पसंद है, अपनी बात कहकर राघवेंद्र वहां से उठकर जाने लगा, लेकिन महेश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा, आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए एक विशेष इंतजाम किया गया है। मैंने त्यागी जी से वादा किया है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और तुम हो कि यहां पर लड़कियां तक ले आए, अरे किसी को पता चला तो कुछ नहीं होगा दादा, किसी को खबर तक नहीं आप यहां पर मौजूद नहीं हैं, अब भाई भाई में कैसा पर्दा, जिद मत कीजिए, मैंने आपके लिए रूम नंबर 100 में स्पेशल इंतजाम कर रखा है, कड़क माल है, आज ही आई है, अब अपने भाई को मना करेंगे क्या, महेश ने उसकी बात काटकर बोला। तू भी ना, चल आज देख ही लेते हैं कि तुम्हारी चॉइस कैसी है, राघवेंद्र ने कहा और रूम नंबर 100 में जाने लगा। महेश जवाब में मुस्कुरा दिया। राघवेंद्र जिस रूम नंबर 100 की तरफ पढ़ रहा था उस कमरे में वैदेही मौजूद थी। वहां मौजूद लड़कियों ने उसके कपड़े बदलकर हल्का फुल्का मेकअप लगाकर वहां पर लिटा दिया था।